सुधाकर।
यस सर।
क्या नाम है वो? सतीश राय।
यस सर।
उसकी रिपोर्ट लाना। बैठो। ये सतीश राय उन्हीं चार लड़कों में से एक है जिनसे परसों लोकल ट्रेन पर तुम्हारी मारपीट हुई। लड़के को काफी चोटें आई हैं। इज्जतदार बाप का बेटा है, इसलिए बाप ने तुम्हारे खिलाफ ये रिपोर्ट लिखवाई है। इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है?
सिर्फ इतना कि इज्जतदार आदमियों के बेटों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेन में सफर करने वाली लड़कियां भी इज्जतदार होती हैं।
लेकिन इस बयान में किसी लड़की का कोई जिक्र नहीं है।
होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सच यह है कि ये चार गुंडे एक शरीफ लड़की को परेशान कर रहे थे और जो कुछ भी हुआ इसी वजह से हुआ।
लड़की का नाम पता बता सकते हो?
जी हाँ, बता सकता हूं।
सुधाकर
जी,
बयान ले लो।
चलिए।
विजय, अगर ये सब सच है तो तुमने या उस लड़की ने किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई?
वो तो चाहती थी, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा।
तुमने जरूरी नहीं समझा? वो लोग गुंडे थे, बदमाश थे, लेकिन तुमने जरूरी नहीं समझा कि उन्हें कानून के या पुलिस के हवाले कर दो।
मुझे अपनी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं।
तुम्हें पुलिस की जरूरत है या नहीं, लेकिन पुलिस को हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो किसी मौके पर भी कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। तुम कसूरवार हो या नहीं इसका पता तो खैर चल ही जाएगा, लेकिन कानून के बारे में अगर तुम इसी तरह सोचोगे जिस तरह के तुम सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल किसी मुश्किल में पड़ जाओ। ये बात याद रखना।
मैं आपकी ये बात भी याद रखूंगा।
मिस्टर विजय, चलिए।
मैं जा सकता हूं?
जाओ।
हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा लिखा।
हाँ, मुझे याद है आपने कहा था आप आएंगे, मगर मैंने सोचा आपने यूं ही कह दिया होगा, बाद में भूल गए होंगे।
मैं भूलता नहीं हूं। एक खुशखबरी थी, सोचा सबसे पहले आपको सुना दूं, इसलिए चला है।
आपको नौकरी मिल गई।
आपको कैसे मालूम?
जो काम ढूंढ रहा हो और क्या खुशखबरी दे सकता है। देखा, भूलती मैं भी नहीं हूं। मैं सचमुच बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूं।
आज नहीं, आप बहुत थकी हुई हैं और फिर रात भी बहुत हो गई है। फिर से
ओके,
बाय
बाय।
अरे हाँ, एक बात जो कहनी थी वो तो कही नहीं है। आप बहुत अच्छा गाती हैं।
मैं जानती हूं।
आपने मुझे बुलाया?
भाई विजय, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुमने ये होटल शहजान में नौकरी कर ली है।
जी हाँ।
भाई कमाल करते हो तुम, अगर खुद नहीं समझ सकते तो कम से कम पूछ तो लिया करो। जानते हो वो होटल किसका है?
जी, के डी नारंग।
और ये भी जानते हो कि वो किस किस्म का आदमी है? स्मगलर है, बहुत बड़ा स्मगलर है वो,
और भी न जाने उसके ऐसे ही कितने गैर कानूनी धंधे हैं। He's a blacklisted man। और आप वहां नौकरी करने पहुंच गए?
मैं उसके होटल में नौकरी कर रहा हूं, और होटल तो कोई गैर कानूनी बिजनेस नहीं।
बेहतर होगा कि आप मुझे ये सब समझाने की कोशिश न करें। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस तरह के होटलों में कौन कौन से जुर्म पलते हैं। कोई जरूरत नहीं ऐसी जगह काम करने की।
ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां कुछ ना कुछ बेईमानी ना होती हो, ये तो आप भी जानते हैं। इस हिसाब से तो मैं कहीं नौकरी कर ही नहीं सकता। मैं एक होटल में काम कर रहा हूं, उसका मालिक स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, डाके डालता है, तो डाले मुझे क्या फर्क पड़ता है?
लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। चारों तरफ लोग तो यही कहेंगे ना कि डीसीपी साहब का लड़का एक स्मगलर के यहां नौकरी करता है, और वो बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। और लोग कहें या ना कहें, जो बात गलत है वो गलत है।
तो सारी जिंदगी बेरोजगार रहूं मैं?
क्यों, क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम्हें किसी ऐसी जगह नौकरी नहीं मिलेगी कि जहां ये बेईमानी के धंधे ना होते हो?
ऐसी जगह इस दुनिया में तो मिलना मुश्किल है, इसलिए कि जिस जगह आप इतने बरसों से काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बेईमानी तो वहां भी होती है।
बकवास बंद करो।
और कानून की हिफाजत करने वालों में और कानून को तोड़ने वालों में तुम फर्क नहीं जानते, तो जाओ अपने दिमाग का इलाज कराओ।
क्या हुआ है? किस बात पे इतनी नाराज हो रहे हैं?
अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा सुन लीजिए साहबजादे कितनी काबिलियत की बातें कर रहे हैं। अभी तो एक मामूली सी नौकरी दी है उस बदमाश ने, और इनकी वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कल को वो कोई छोटा मोटा एहसान कर देगा तो तुम्हारे लिए तो वो बाप से भी बढ़ के हो जाएगा।
उसका तो बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, क्योंकि उस बदमाश ने मेरी जिंदगी उस वक्त बचाई थी जब मेरे अपने बाप ने कानून की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी बचाने से इनकार कर दिया था।
विजय, होश में आकर बात कर बदतमीज।
इस बात का अफसोस नहीं है मुझे विजय कि तुमने मुझसे बदतमीजी की है। हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि तुम्हारे ख्यालात कितने गलत और कितने घटिया हैं। अब मेरी बात सुनो।
अब जाने दीजिए।
शीतल, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलो। विजय, या तुम उस आदमी के साथ काम करोगे और या फिर इस घर में रहोगे।
मैं इस घर से जा रहा हूं।
तो तुमसे ये कहने की जरूरत नहीं कि इस हमले का किसी से भी जिक्र मत करना।
कौन सा हमला?
विजय, आज तुमने मेरी जान बचाई, एक बार फिर इसका शुक्रिया।
नारंग साहब, याद कीजिए, बरसों पहले पुलिस ऑफिसर अश्विनी कुमार और उनका 8 साल का बच्चा, जिसे कुछ लोग उठा के ले गए थे, और जब उस बच्चे ने उनके चुंगल से भागने की कोशिश की तो आप चाहते तो उसे दोबारा पकड़वा सकते थे, लेकिन आपने उसकी जान बचा ली, और ये मेहरबान चेहरा मुझे हमेशा याद रहा, इसलिए कि वो बच्चा मैं था मिस्टर नारंग।
तुम डीसीपी अश्विनी कुमार के बेटे हो?
जी हां, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रहता। और आप यकीन कीजिए कि आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ मैंने सुना और देखा, मुझे कुछ याद नहीं। गुड नाइट मिस्टर नारंग। अरे मामा, आओ आओ ना। तुम्हें यहां का पता कैसे मिल गया?
जिन्हें फिक्र होती है वो पता भी लगा लेते हैं, समझे?
हाँ समझ गया, तुम पहले बैठे तो सही। आओ आओ यहां बैठो। कैसी हो तुम?
हाँ बड़ी चिंता है मेरे तुमको। यहां और कौन कौन रहता है?
एक तो मैं हूं और एक, देखो मामा फ्लैट मेरा तो है नहीं, फ्लैट तो उसका है, तो वो तो रहेगी। रोमा, रोमा नाम है उसका। मामा मामा देखो सुनो, मेरी बात सुनो, ये क्या कर रही हो तुम?
सामान बांध रही हूं और क्या।
देखो मामा ये सब गड़बड़ वाली बातें हैं, मैं उस घर में वापस जाने वाला नहीं हूं। अब जो हो गया सो हो गया ना।
हाँ हाँ उस घर में हम लोग सब जुल्म करते ना तुम पर, मेरे साथ ये सब उल्टे सीधे बात नहीं करना। सामान बांधो और घर चलो।
मामा देखो मामा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, सच पूछे तो तुम याद भी बहुत आ रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हें देख लिया मिल लिया, मगर अब मैं वहां जाऊंगा नहीं।
क्यों नहीं जाओगे? मैं भी तो सुनू, आखिर बाप है वो तुम्हारे, कुछ कह नहीं सकते?
अभी मैं कुछ कह दूंगा तो फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा। मेरी जबान मत खुलवा मम्मा, बस कह दिया मैं नहीं जाऊंगा।
ठीक है मैं भी नहीं जाती। अपना सामान नहीं मंगवा लेती हूं, अगर इतने बुरे हैं वो तो रहने दो उनको अकेले।
ओफो मम्मा तुम समझती क्यों नहीं हो?
हाँ मैं कैसे समझूंगी, मैं तो जाहिल हूं ना, तुम बाप बेटे बहुत समझदार हो। जब से चले आए हो मुझे तो कुछ कहते नहीं, लेकिन दिल पर क्या गुजरती है मुझे पता है। दिन में 10 बार झूठे बहाने से ऑफिस से फोन आते हैं, ये कर दिया वो हो गया, लेकिन पूछना क्या चाहते हैं क्या मैं नहीं जानती, एक तुम आए कि नहीं।
चलो बस मन करो ही रोना, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम कहती हो कि मैं घर आ जाऊं, मैं आ जाऊं, बस
आ जाऊंगा क्या, अभी चलो।
अच्छा नहीं लगता मां, मैं किसी के घर में हूं, उसने मुझे जगह दी है, उसे कह के मिलके तो जाना चाहिए। तुम चलो मैं कल आ जाऊंगा।
आएगा ना?
पक्का वादा। चलो जरा हंस के दिखाओ ना, चलो हंसो हंसो।
विजय एश,
गुड मॉर्निंग सर।
क्या बात है सुधाकर?
सर हमारे पास मिस्टर विजय का वारंट है।
किसका वारंट है?
मिस्टर विजय का।
चार्ज क्या है?
इन पर गणपत राय नाम के एक आदमी का खून का इल्जाम है सर।
लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। और ये गणपत राय, मैं तो इस नाम के किसी आदमी को जानता भी नहीं हूं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया।
क्या हुआ, क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है?
मामा ये लोग वारंट लाए मेरे नाम, कहते मैंने किसी का खून किया है।
क्या?
अरे मैंने किसी का खून नहीं किया मामा, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं।
मैं आपको एक बात बता दूं, ये कैसा भी हो मेरी कसम झूठी नहीं खा सकता। आपके पुलिस को जरूर कोई गलत फहमी हुई है।
सर गलत फहमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मिस्टर विजय कल रात 11:30 के दरमियान एक लड़की रूमा देवी के साथ होटल सम्राट में थे और वहीं इनका गणपत राय नाम के आदमी से झगड़ा हुआ।
हाँ।
और इन्होंने उसे बहुत बुरी तरह मारा और सबके सामने बार बार उसे जान से मारने की धमकी दी।
हो सकता है, मैं बहुत गुस्से में था, मुझे याद नहीं।
और जब वो होटल के बाहर गया तो ये भागकर उसके पीछे गए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसका खून कर दिया। मैं तो एक मिनट में वापस आ गया था।
मगर आपके चले जाने के चंद मिनट बाद गणपत राय की लाश उसी होटल के सामने वाली फुटपाथ पर पाई गई।
मैं सच कह रहा हूं,
हो सकता है तुम सच कह रहे हो, लेकिन इन हालात में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता।
ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे कहती हूं विजय बेकसूर है, मैं जानती हूँ। ये मेरे सामने झूठ नहीं बोलेगा, मैं जानती हूँ। आप इनसे कहते क्यों नहीं, ये लोग तो आपका कहना मानेंगे ना। आप इनसे कह दीजिए कि विजय बेकसूर है।
बस करो मामा, मेरे लिए किसी से रहम की भीख मांगने की जरूरत नहीं।
जरूरत है, मुझे जरूरत है। देखिए हमारा बेटा कोई चोट डाकू खून नहीं है, आप इनसे कह दीजिए ये लोग इसे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते।
अगर तुम्हारा बेटा बेकसूर है तो घर वापस लौट आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन समझने की कोशिश करो, उसके नाम वारंट है, वारंट। सुधाकर ले जाओ इसे।
नहीं ऐसा मत कहिए, ये नहीं जाएगा, मैं इसे जाने नहीं दूंगी।
मां बस करो, मैं जेल जाता हूं, जाऊं फांसी पे चढ़ता हूं चढ़ूं, लेकिन तुम अपने आप को मेरे लिए बेइज्जत नहीं करोगी।
इसको अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है, इसका फैसला अदालत में होगा।
तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
विजय अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
ये मत भूलो कि मैं यहां एक बाप की हैसियत से नहीं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूं।
कौन सी नई बात है? हाँ, आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहां इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भूल जाना चाहिए।
सर, एक साहब मिस्टर विजय कुमार की जमानत के लिए आए हैं।
अच्छी तरह देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये है जमानत के कागजात और कोर्ट से मिस्टर विजय कुमार की रिहाई के ऑर्डर्स।
सर, ये मिस्टर नारंग है,
के डी नारंग।
अच्छी तरह पहचानता हूं मैं आपको, मिस्टर के डी नारंग।
मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स भी देख लीजिए, इसके बाद कानूनन आप मिस्टर विजय कुमार को एक मिनट के भी यहां नहीं रोक सकते।
कानूनन मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, ये जानने के लिए मुझे मिस्टर के डी नारंग या उनके वकील की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सुधाकर।
यस सर।
गेट मिस्टर विजय हियर।
यस सर।
बैठिए।
मिस्टर विजय, आप बाहर आ सकते हैं।
हेलो विजय।
थैंक यू नारंग साहब।
विजय, तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं,
और अब मैं भी आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं नारंग साहब।
कम, लेट्स गो।
विजय, इसे नसीहत नहीं मशवरा समझना, अपनी जिद में आके इन लोगों के साथ किसी ऐसे रास्ते पर ना निकल जाना जहां से अगर चाहो भी तो वापस ना आ सको।
मैं इस बार वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं।